मंदिरी वावारा दिनांक दिनांक 21 अगस्त से तत्वार्थ सूत्र पर प्रवचन शुरू हो रहा है।
मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। तत्वार्थ सूत्र की भूमिका कैसे बनी होगी, ये इस बारे में पूज्य स्वामी ने अपने सर्वार सिद्धि में बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है। वहाँ उन्होंने इस तरह की कल्पना की कि जैसे एक उद्यान में कोई आचार्य महाराज, और उन आचार्य महाराज के लक्षण लिखे हुए हैं कि वे अपने आत्महित के साथ साथ दूसरे के हित के लिए उत्सुक हैं, उनके समीप, और जो अपने शरीर के द्वारा ही मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, अभाग बपुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गम, ऐसे कोई आचार्य महाराज के पास कोई भव्य जीव जो अपने आत्मा के कल्याण में रुचि रखता है वो वहाँ पहुँचता है, और वहाँ जाकर के वो पहला प्रश्न करता है कि किमनु खलु आत्मने हितम स्यादिति, हे महाराज आत्मा का हित किसमें है? तो वो जवाब देते हैं कि मोक्षाति, मोक्ष में ही आत्मा का हित है। तो वो कहते हैं कस्य प्राप्ति उपाय, तब फिर उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है, तब फिर ये सूत्र लिखा जाता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय यही है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है, वे इज वन। इसमें सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष का मार्ग है, या सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष का मार्ग है, या सम्यक चारित्र अकेला मोक्ष का मार्ग है, या कोई दो मिलकर के मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नहीं है, या कि ये तीनों अलग अलग मोक्ष के मार्ग हैं, ऐसा भी नहीं है। और तो मोक्ष का मार्ग एक ही है जो इन तीनों की एकता रूप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जब एक रूप हो जाते हैं तब उसी का नाम मोक्ष मार्ग। इस तरह से इन्होंने पहले वाले सूत्र की व्याख्या में यही कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता ही मोक्ष का मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग। अब फिर प्रश्न उठा कि सम्यक दर्शन क्या चीज है, तो आगे वाले सूत्र में उसका, सूत्र के मायने हैं जिसमें अनंत अर्थ हो, ऐसी परिभाषा दी है, जिसमें अनंत अर्थ हो वो सूत्र है। तो अब जितने भी अर्थ अपन इसके निकालना चाहें उतने निकाल सकते हैं, पर यहाँ इस तत्वार सूत्र में जैसे कि कोई एक एक चीज को डिस्क्राइब करना हो तो उसे बहुत आसानी से कैसे डिस्क्राइब किया जाए, तो एक एक सूत्र में एक 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 प्रश्न जैसे उठा और उसका आंसर वैसा दे दिया। तो अब जैसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता ही मोक्ष मार्ग है ऐसा कहा, तो एक सहज प्रश्न उठेगा कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चारित्र क्या है। तो अब ये तीनों चीजें चलेंगी। पहले वाले अध्याय में मात्र सम्यक दर्शन की चर्चा होगी और सम्यक ज्ञान की चर्चा होगी। उसके बाद जो है उधर जाकर के जब सम्यक दर्शन के सात तत्व हैं तो सात तत्वों में से अलग अलग सातों तत्वों का प्ररूपण और उसी के बीच में और सातवें अध्याय में जाकर के चारित्र की चर्चा होगी, बाकी सब अध्यायों में सात तत्वों का प्ररूपण। तो दूसरे सूत्र में कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अब तत्वार्थ का श्रद्धान का क्या अर्थ है, तो कहते हैं कि अपने अपने स्वरूप के अनुसार जो जिस तत्व का स्वरूप है उस अनुसार श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अकेले तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह सकते थे, तो कहते नहीं, अकेले तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्व के स्वरूप जैसा कि तत्व का स्वरूप भगवान ने कहा है उससे ठीक वैसा ही श्रद्धान करना, जैसे घड़ा कहने से हमारे भीतर क्योंकि हमें घड़े की जानकारी है तो फौरन घड़े का आकार बनता है, ठीक इसी तरह जीव कहने पर यह उपयोग वाला है, ज्ञान दर्शन रूप है, इस तरह की जो भाव भावभासना होती है वो तत्वार्थ कहलाता है। सामान्य रूप से जीव का जीवपना तो तत्व है, लेकिन वो जीवपना कैसा है इस तरह का भीतर भीतर जो है जो एहसास होता है वो भाव भावभासना एक शब्द आता है, भाव भावभासना शब्द, माने हम उस शब्द के माध्यम से उसके अर्थ तक पहुंच जाएं,
वैसा ही कल्पना एकदम हो जाए।
हाँ, वैसी ही कल्पना हमारे भीतर, माने तत्व के भाव को या कि तत्व के अर्थ तक जब हमारी दृष्टि चली जाती है, हाँ दृष्टि चली जाती है या वैसी प्रतीति होने लगती, हमें अनुभूति होने लगती, उसका नाम ही श्रद्धा। इसलिए यहाँ पर तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन का है कि जो तत्व जिस स्वरूप में अवस्थित है उसका उसी रूप में श्रद्धा
हो जाना,
हाँ श्रद्धान हो जाना, उसमें वैसी ही रुचि हो जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की और भी बहुत सारी परिभाषाएं आचार्य ने बनाई हैं, सच्चे देव गुरु शास्त्र के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, आपापर के भेद विज्ञान का नाम भी सम्यक दर्शन है, या कि आत्मरुचि का नाम भी सम्यक दर्शन है, पर द्रव्य निन आपने रुचि, ऐसी परिभाषा भी दी हुई है। तो अगर हम ऐसा करें कि सिद्धांत और अध्यात्म की अलग अलग परिभाषाएं ले लें तो भी हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, अध्यात्म में निश्चय और व्यवहार की कथनी होती है, तो जो बाह्य आचरण है वो व्यवहार कहलाता है और जो आंतरिक परिणति है उसका नाम निश्चय कहलाता है। तो बाह्य में सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करना ये व्यवहार है, या तत्वार्थ का श्रद्धान करना ये व्यवहार है, उस तत्वार्थ के श्रद्धान या कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान से जो आत्मा में रुचि जागृत होती है या जो आपापर का भेद विज्ञान होता है वो सम्यक दर्शन जो है वो आंतरिक है। इस तरह से ये चार परिभाषाएं अध्यात्म की अपेक्षा से बना दी है और एक परिभाषा बना दी है, वो है कर्मों के उपशम क्षय और क्षयोपशम से होने वाली आत्मा की निर्मल अवस्था। मिथ्यात्व का उपशम हो गया तो जो निर्मल परिणाम उत्पन्न हुए हैं उसको सम्यक दर्शन कह दिया, या कि मिथ्यात्व का क्षय ही हो गया तब जो निर्मलता आत्मा में आई उसको सम्यक दर्शन कहा, या मिथ्यात्व का क्षय भी हुआ है और उपशम भी हुआ है, दोनों स्थितियां हैं और सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है तब उस स्थिति में भी अलग सम्यक दर्शन, या कि क्षय उपशम सम्यक दर्शन, इस तरह से सम्यक दर्शन को डिफाइन किया है। वैसे ओरिजिनली देखा जाए तो तत्वार्थ श्रद्धान या सच्चे देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान यही सम्यक दर्शन है, लेकिन बाकी जो अपन को देखने में आता ना कि एक प्रकार का है सम्यक दर्शन, दो प्रकार का है, तीन प्रकार का है, चार प्रकार का, इस तरह की जो बात कही गई है उससे मैं कल विचार कर रहा था कि ये सिर्फ हमें समझाने के लिए कहा गया, सम्यक दर्शन कोई अलग अलग प्रकार का क्षयोपशम से हुई है इसलिए आपने उसको क्षयोपशम एक सम्यक दर्शन कह दिया, कर्मों के क्षय से होती तो आप उसको क्षय कहते, या कर्मों के उपशम होती हो तो उसको औपशमिक कह देते, या फिर आपके आत्मा में जो रुचि रूप परिणति हुई है उसको आपने सम्यक दर्शन कह दिया, या आपके आत्मा में जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से सच्चे देवगुरु शास्त्र में आपकी श्रद्धा हुई उसको आपने सम्यक दर्शन कह दिया। इस तरह से ये सम्यक दर्शन को जो अपने अंदर होने वाली परिणामों की निर्मलता है उसको अलग अलग ढंग से डिफाइन
समझाने के लिए,
अब नयों की अपेक्षा कथन करेंगे तो निश्चय व्यवहार, बाकी निश्चय व्यवहार नाम का कोई सम्यक दर्शन भीतर से नहीं होता है कि किसी को निश्चय सम्यक दर्शन नाम का सम्यक दर्शन हो गया हो, नहीं, ऐसा सम्यक दर्शन जो कि अंतरंग परिणामों के माध्यम से डिफाइन किया जाएगा उसको हम निश्चय कहेंगे, और जो बाह्य क्रियाओं के माध्यम से डिफाइन किया जाएगा उसको हम व्यवहार सम्यक दर्शन कहेंगे। इस तरह जहां निश्चय सम्यक दर्शन होता है वहां व्यवहार सम्यक दर्शन होता ही है, लेकिन जहां व्यवहार में सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा हो वहां अंतरंग परिणामों में भी वैसी ही रुचि हो ऐसा कोई नियम नहीं है।
हाँ,
इस वजह से जो है सम्यक दर्शन के विषय को इस तरह से डिफाइन किया है, बाकी और कोई विशेष उसमें नहीं है। तब फिर प्रश्न उठा कि ये जो सम्यक दर्शन तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है वो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो तन निसर्गाद अधिगमन वह सम्यक दर्शन निसर्गज भी है और अधिगमज भी है, उसकी उत्पत्ति सहज रूप से होती है अर्थात अंतरंग में मिथ्यात्व के क्षय उपशम और क्षयोपशम किसी बाह्य कारण की आवश्यकता नहीं है, अंतरंग में अपने आप ही कर्मों का वैसा क्षयोपशम इत्यादि हुआ और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई स्वाभाविक रूप से, उसे कहते हैं निसर्गज। बिना किसी उपदेश के जो अंतरंग परिणामों में निर्मलता आती है और श्रद्धान उत्पन्न हो जाता है उसको निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं बाई नेचर। और जो अधिगमज अर्थात परोपदेश के द्वारा उत्पन्न हुई जो आत्मा की निर्मलता और श्रद्धान है उसका नाम अधिगमज सम्यक दर्शन।
महाराज जी जैसे आज आपने सवेरे बताया उसके लिए पुरुषार्थ तो आपने पहले किया है, उसका ही फल आज आपको मिल रहा
है तो, पर वर्तमान में चूंकि कोई पुरुषार्थ नहीं किया है इसलिए उसको निसर्गज कहा, और वर्तमान में अगर उपदेश पूर्वक होता तो उसको अधिगमज कहते।
पर वैसे देखा जाए तो उसका आपका पुरुषार्थ सही है चाहे आपने अभी किया हो या पहले किया हो,
एक ठीक बात। उसमें प्रश्न यही उठाया है कि क्या जो निसर्गज सम्यक दर्शन है क्या उसमें उपदेश आवश्यक नहीं है, वर्तमान में नहीं है क्या पहले नहीं था, तो कहते वो तो हमें स्वीकार ही है लेकिन हम तो अभी बाह्य पर उपदेश की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं इसलिए उसकी उत्पत्ति अगर वही उपदेश पूर्वक हुई है तो वो अधिगमज है और अगर नहीं हुई है तो निसर्ग, ऐसा इन्होंने स्वयं ही उसमें ऐसे इन्होंने उदाहरण भी दिया है। जैसे कोई व्यक्ति बिना किसी की मदद के जन्मजात शिल्प इत्यादि विद्याओं को सीख जाए, या जैसे पक्षी जन्म लेते ही साथ आकाश में उड़ना सीख जाते हैं उनको सिखाना नहीं पड़ता, इसी तरह कुछ जीवों को बिना किसी बाह्य कारण के मिले और उनकी अपनी योग्यता से ही उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति
होता है तो ऐसा हो जाता है,
कर्म का क्षय उपशम हो गया, उपशम हो गया उससे मतलब कोई विजिबल कॉज नहीं समझ में आ रहा
अभी प्रेजेंट
वो हिडन कॉज है, प्रेजेंट में तो कोई कॉज ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, और जिसका कोई प्रेजेंट कॉज दिखाई पड़ रहा है वो या दूसरे के उपदेश से जिसको हुआ है अधिगम सम्यक दर्शन कहलाता है। इस तरह इन्होंने माने एक तो स्वतः ही ज्ञान प्राप्त जैसे लोगों को हो जाता है किसी भी क्षेत्र का, और कुछ लोगों को सिखाने पढ़ाने से होता है गुरु के माध्यम से होता, तो ऐसे दो भेद कर दिए उन्होंने। बाकी सम्यक दर्शन तो जो हुआ है अंतरंग में अधिगमज वाले को भी वैसा ही हुआ है, सो निसर्गज वाले को भी वैसा ही हुआ है, पर बाह्य निमित्तों की अपेक्षा से उन्होंने इसको दो तरह से उत्पत्ति बता दी कि वो जो सम्यक दर्शन है वो निसर्ग से भी होता है और अधिगम से भी होता है, इसलिए निसर्गज और अधिगमज ऐसे दो प्रकार का सम्यक दर्शन है। जो प्रश्न जो कहा गया कि तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम्, तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और यही बता दिया कि ये दो प्रकार से उत्पन्न होता है, तत्व पर श्रद्धा कब होती है या तो गुरु के उपदेश से होती है या कि स्वतः ही हो जाती है, तो कहते हैं कि वो तत्व है क्या चीज जिसके श्रद्धान की आप बात कर रहे हैं वो तत्वार्थ है क्या, तो कहते हैं जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम, जीव अजीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष यही तत्व है। ये सात तत्व हैं। इन सात तत्वों का स्वरूप अगर अपन जानना चाहें तो जो उपयोग वाला है जिसमें चेतना है वो जीव है, इससे जो विपरीत है वो अजीव है। आत्मा में कर्मों के आगमन का नाम आश्रव है, आत्मा और कर्म के बीच एक क्षेत्रावगाह संबंध होने का नाम बंध है। आत्मा में नवीन कर्मों का आगमन जिन परिणामों से रुक जाता है उसे संवर कहते हैं, और आत्मा में के साथ बंधे हुए कर्मों का आंशिक रूप से पृथक्करण हो जाए उसको निर्जरा कहते हैं, और समस्त कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। यही सात तत्व जानने योग्य हैं। फिर कहते हैं कि इन सात तत्वों को और सम्यक दर्शन आदि को जानने का क्या उपाय है, तो जानने के उपायों में अब ये सूत्र होंगे कि नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, नाम स्थापना द्रव्य और भाव रूप से सम्यक दर्शन और जीवादि पदार्थों का निक्षेप या कि जानकारी, प्राप्त की जाती है। लोक व्यवहार में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उससे निक्षेप कहते हैं। वैसे सामान्य रूप से न्यास या निक्षेप का अर्थ रखना है। किसी का कोई नाम रख दिया, किसी चीज में किसी की स्थापना कर दी, या कोई आगामी पर्याय को या पहले हो चुकी पर्याय को वर्तमान पर्याय में ही आरोपित कर दिया, और या कि जो वर्तमान पर्याय है उसी को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार चार हो गए। नाम रख दिया लोक व्यवहार चलाने के लिए, वो नाम निक्षेप हो गया। किसी मूर्ति इत्यादि में अनंत भगवान की स्थापना कर दी, स्थापना निक्षेप हो गया। किसी सेठ के बेटे को आगे जो सेठ होने वाला अभी से उसे सेठ कह दिया, ये द्रव्य निक्षेप हो गया। या कि पहले जो सेवकाई करता रहा है उसको आज उसने रिटायर भी हो गया फिर भी उसको सेवा कह रहे हैं, उसी नाम से पहचानते हैं, ये सब द्रव्य निक्षेप है। और वर्तमान पर्याय जो है पूजा कर रहा है, पुजारी है। इस तरह से ये भाव निक्षेप कहलाएगा। तो कोई भी चीज को चार तरह से ही जाना जा सकता, या कि भाषा का व्यवहार चार प्रकार से ही होता है। जैसे एक नाम की गाय होती है, एक गाय का चित्र है, है? और एक देखा जाए तो गाय का छोटा सा बच्चा है जो कि आगे गाय बनने वाला है, उसको भी अपन गाय कह देते हैं। एक वैसी भी गाय है और एक जो दूध देती है वो भी गाय है। इस तरह से अगर देखें तो उस गाय को जानने के लिए ये चार ही बातें हैं कि भाई ये अकेले नाम काम चलाने के लिए गाय, नाम रख दिया आपने तो ऐसी भी गाय मिल सकती, कोई कंफ्यूज कर जाए, गाय इसको भी गाय कह रहे हैं, कहते हाँ ये नाम की गाय है और ये चित्र वाली गाय है और ये आगे बनेगी ये वाली गाय और ये ओरिजिनली तो ये वास्तव में तो गाय ये है, अब आप कंफ्यूज मत करना। इसलिए जो है चार निक्षेप करके लोक व्यवहार चलाने के लिए
बताएं कैसे होगा।
इस तरह से तो कोई जीव का नाम ही सम्यक दर्शन है, ने? किसी विशेष उसमें सम्यक दर्शन ऐसी स्थापना कर दी, या आगे जिसको सम्यक दर्शन होने वाला उसको अभी से सम्यक दृष्टि कह दी, या जो वास्तव में जिसके मिथ्यात्व का अभाव हो गया ऐसे जीव को सम्यक दृष्टि कहना। लोक में ऐसे चार प्रकार के मिल सकते हैं सम्यक दर्शन, या कि अन्य जो पदार्थ हैं उन सब के बारे में भी ऐसी चार प्रकार की विधि हो सकती है जानने की, वो इसमें इन्होंने बता दी। एक ही शब्द प्रयोजन या प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थ देता है, और प्रत्येक शब्द के कम से कम चार अर्थ होते हैं। वे चार अर्थ जो है वो चार न्यास या निक्षेप की तरह उपयोग में लिए जाते हैं। और भी जानने के उपाय हैं, प्रमाण नये रति गमा, प्रमाण और नये के द्वारा अधिगम होता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति। सम्यक दर्शन और जीवादि पदार्थों को जानने का एक उपाय और है प्रमाण नये के द्वारा। जो समग्र वस्तु को जाने वो प्रमाण, जो प्रमाण के द्वारा जानी गई वस्तु को सापेक्ष रूप से कथन करे उसे नये कहते हैं। प्रमाण जानने की प्रक्रिया है, नये कथन करने की शैली का नाम। इतना ही प्रमाण और नये में फर्क है। कहीं कहीं पर आचार्यों ने प्रमाण को वृक्ष माना है और उसकी शाखाएं उपशाखाएं ये सब नये है। जैसे सूर्य प्रमाण की तरह है, उसकी रश्मियां वो नये की तरह है। इस तरह प्रमाण और नये इन दोनों के द्वारा पदार्थ का ज्ञान होता। प्रमाण दो प्रकार का होता, एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक परोक्ष प्रमाण होता। ये चर्चा जो है वो आगे की जाएगी, या कि स्वार्थ प्रमाण होता है और एक परार्थ प्रमाण होता है। इस तरह के भी प्रमाण के भेद किए हैं, और नये के भेद भी आगे जाकर के बताएंगे कि सात भेद होते हैं। सामान्य रूप से निश्चय और व्यवहार ऐसे दो भेद होते हैं, या कि पर्यायार्थिक द्रव्यार्थिक होते हैं। फिर नैगम संग्रह व्यवहार विजु सूत्र सप्तशम रूढ़ एवं भूत ये नए होते हैं, ये बाद में चर्चा करेंगे। पर अभी सामान्य रूप से जो सीखने वाली बात है वो ये कि प्रमाण और नये इन दोनों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन आदि की चर्चा इसके अनुसार की जाती है। और जानने के क्या उपाय हैं, तो दो सूत्र और जानने के लिए कहते हैं, फिर उसके बाद जो है प्रमाण की विशेष चर्चा करेंगे। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वयश्च। ये दो सूत्र हैं जिनके माध्यम से भी वस्तु को जाना जाता है। निर्देश के मायने क्या है? स्वरूप अभिधानम। किसी भी चीज का पहले हमें स्वरूप मालूम होना चाहिए, तब हम उस चीज को ठीक ठीक जान पाएंगे, नहीं तो सब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। पेन क्या है और कलम क्या है और पेपर क्या है, इन सब का स्वरूप अलग अलग हमें मालूम है, इसलिए हम सबको जान पाते हैं अलग अलग। तो कहते हैं स्वरूप को जानना पहले आवश्यक है, यही निर्देश कहलाता है। फिर आधिपत्यम, उसका स्वामी कौन है ये भी जानना पड़ेगा। उस चीज को कौन, कहाँ हम पाएंगे, किसके भीतर वो चीज पाई जाएगी, वो उसका स्वामी कहलाएगा। और उत्पत्ति निमित्तम साधनम। साधन किसे कहते हैं? उत्पत्ति के निमित्त। किस निमित्त से उस चीज की उत्पत्ति होती है, उस चीज का स्वरूप जरूरी है जानना, उस चीज का स्वामी जानना जरूरी, उसकी उत्पत्ति के कारण जानना जरूरी। और कहते अधिष्ठानम, कहाँ वो चीज पाई जाती है, वो अधिष्ठान, उसी को अधिकरण भी कहते हैं। काल परिच्छेदा स्थिति, और वो जो चीज है वो कितने काल तक उसी अवस्था में रहती है, वो उसका काल क्या है वो भी जानना, तब वस्तु का पूरा ज्ञान होगा। और विधानम प्रकार, वह वस्तु कितने प्रकार की है। इस तरह अपन देखें तो इन छह बातों के द्वारा हमने वस्तु को उसकी टोटेलिटी में जान लिया। इन्हीं छह को थोड़ा सा और एलाबोरेट करके आठ बातों में के माध्यम से भी जाना जाता है, इसलिए आठवें सूत्र में सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर अल्प बहुत भाव, भाव और अल्प बहुत, इस तरह से आठ बातें हैं, वो इन्हीं छह के अंतर्गत ही आ जाती हैं, ये सब उसमें ही समाहित है। तो सत के मायने हैं वस्तु को हम बाय एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के, सत का मतलब है अस्तित्व, अस्तित्व के माध्यम से जब कोई भी चीज को हम जानना चाहेंगे तो उसका अस्तित्व है कि नहीं ये तो पहले मालूम होना चाहिए, तो सब। फिर उसके बाद बाई नंबर, संख्या के द्वारा जानेंगे। फिर कहते हैं बाई प्लेस, कहाँ मिट्टी क्षेत्र के द्वारा जानते हैं, हैं? बाई एक्सटेंट ऑफ प्लेस, कहाँ तक पाई जाएगी वो स्पर्श के, स्पर्श जो है वो कहलाता है त्रिकाल गोचरम स्पर्श। अभी तो यहाँ पाई जाती है वर्तमान, हाँ जो निवासो वर्तमान काला विषया, क्षेत्र का मायना है, मतलब है वर्तमान में जहाँ पाई जाती है। और स्पर्श का के मायने है त्रिकाल गोचरम, पहले कहाँ थी आगे कहाँ होगी, आज वर्तमान में यहाँ पर है। और काल के मायने हैं समय, है? समय किस, कितने समय तक किस उसमें रहती है सब जीवों के लिए और एक जीव की अपेक्षा से, जैसे सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन एक जीव की अपेक्षा से देखा जावे तो होता है और अनंत काल तक रहा आता है, इसको बोलते सादी अनंत, होता है छूट जाता है, सादी शांति भी है, चाहे उपसम सम्यक दर्शन है उपसम सम्यक दर्शन है, इस तरह से काल का विचार किया जाता है। और अंतर, अंतर का मतलब होता है विरह काल, एक पर्याय को छोड़ करके दूसरी पर्याय को ग्रहण कर लिया, अब पुनः उसी पर्याय को जब तक ग्रहण नहीं करेगा तब तक का काल अंतरकाल या विरह काल कहलाता है। और भाव, भाव तो औपशमिक क्षय उपशमिक और क्षायिक भाव है, इनकी अपेक्षा से जो है सम्यक दर्शन इत्यादि का और तत्वों का वर्णन किया जाता। और अल्प बहुत मतलब कौन किसकी अपेक्षा कितना कम या ज्यादा है, ये जो एक रेसिप्रोकल कंपैरिजन होता है उसको, उसके माध्यम से भी वस्तुओं को जाना जाता है, तो ये अल्प बहुत कहलाता है। इस तरह अपन देखें, एक उदाहरण भी इसमें मैं हमेशा देता हूँ कि जैसे किसी के यहाँ भी गए और कोई चीज अपने को चाहिए है तो अपन पूछते हैं कि ये फलानी चीज है क्या आपके पास, तो वो कहता है पहले जरूरी है सब अस्तित्व जानना जरूरी है, देखिए हमको बहुत यूज क्वांटिटी में चाहिए, आपके पास इतनी मिल जाएंगी संख्या, हाँ आपको इतनी मात्रा मिल जाएंगी, देखिए मैं लेने तो आऊँगा, आपकी यहीं पर दुकान है, हाँ हमारी तो इस यहीं इसी दुकान पर मिलेगी, कहीं और भी आपके मिलती हैं क्या किसी और, हम अगर दिल्ली जाके और आपकी इसी कंपनी की बात खरीदना चाहें, हाँ हमारी वहाँ दुकान वहाँ पर भी है, वो पहले हमारी यहाँ हुआ करती थी, अब हमारी वहाँ बंद हो गई है, वहाँ है लेकिन अभी ये सब ये कहलाएगा, स्पर्श कहलाएगा। देखिए मैं फिर कितने समय से कितने समय के बीच आपकी दुकान पर आ सकता हूँ, खुली कब तक रहेगी, सामान ये सब जानकारी लेना, उसको चीज़ खरीदनी है तो इतनी जानकारी देना। फिर पूछ रहा है कि अच्छा बंद रहने का टाइम कितना है, कितने समय से कितने समय तक बंद रहती, ताकि मैं वो भी ध्यान में रखूँ। इतनी तो खुलती है पर किन किन दिनों में बिल्कुल टोटली बंद रहती है, संडे को बिल्कुल क्लोज है या कि वेडनेसडे को क्लोज है, वो भी जानना जरूरी है। अंतर कि बिल्कुल दुकान बंद ही रहती। फिर कहते हैं अच्छा और आपने रेट्स नहीं बताए सर, भाई किस चीज़ का कितनी कितना क्या भाव, किस उस पर दाम पे लगाएंगे, तो भाव भी जानते हैं। और फिर देखिएगा ये हमको इतनी चाहिए, ये इतनी चाहिए, ये 15 चाहिए तो ये 25 चाहिए, ये एक प्रपोर्शन रेसिप्रोकल जो कंपेरिजन मात्रा का भी वो अल्प बहुत। ऐसे अगर अपन देखें तो किसी भी चीज़ को अपन सहज रूप से भी प्राप्त करते हैं, खरीदते हैं, जानते हैं, तो इन आठ बातों के द्वारा ही जानते हैं इन्हीं को आठ। हाँ,
वस्तु के बारे में पूर्ण
ज्ञान के लिए आठ बातों के माध्यम से आठ अधिकार हैं, या यही आठ अनुयोग के इनके माध्यम से अपन जानते हैं। इस तरह से ये जानने के तरीके हुए, नाम स्थापना निक्षेप, नाम स्थापना द्रव भाव तत्सन्यासा, इन चार निक्षेपों के द्वारा वस्तु को जाना जाता है, या कि प्रमाण मय के द्वारा, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान के द्वारा, यह सब संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्पभूत के माध्यम से इस तरह के।
मंडी वामारा दिनांक 28 अगस्त 1999।
नौवा सूत्र है, मति श्रुतावधि मना पर केवलानी क्या। वो जो कहा था कि प्रमाण नहीं रधि गमा, प्रमाण और नए के द्वारा ज्ञान होता है, तो फिर वो प्रमाण क्या है। तो कहते हैं कि प्रमाण का अर्थ सम्यक ज्ञान है। आगे जाकर के वो कहेंगे कि ये जो ज्ञान है या सम्यक ज्ञान है वो ही प्रमाण है, तत्प्रमाणी है। इस तरह इन दोनों सूत्रों को देखें तो प्रमाण के या ज्ञान के और विशेष रूप से सम्यक ज्ञान के पांच भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ये इंद्रिय ज्ञान कहलाते हैं, क्योंकि ये इंद्रिय और मन की सहायता से। और शेष जो अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान है, ये इसमें भी केवल ज्ञान तो अतीन्द्रिय है, शेष दो हैं उनमें भी इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही ये होते हैं। पर अवधि ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थ को जानता है, और मनःपर्यय ज्ञान दूसरे के मन में स्थित बात को जान पाता है, इसलिए इनकी तो सीमा है अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान की। लेकिन जो अनलिमिटेड और अतीन्द्रिय ज्ञान है वो केवल ज्ञान है। इस तरह से इन पाँच ज्ञानों का आगे भी जा कर के और स्वरूप तो बताएंगे, पर यहाँ शायद में उन्होंने ये कह दिया कि वो जो हमने कहा था कि सम्यक ज्ञान आदि और सात तत्वों को जानने के उपाय में प्रमाण और नए है, अब चर्चा प्रमाण की शुरू होती है। तो कहते हैं कि ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, महापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। अब तक प्रमाणी वो पांच प्रकार का प्रमाण है, वो दो प्रकार, उसके भी दो रूप हैं, आद्य परोक्षम, प्रत्यक्षम, अन्यथा। इसमें से जो आदि के दो ज्ञान हैं अर्थात मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, वो तो है परोक्ष, और शेष जो तीन बचे वो है प्रत्यक्ष। अपने यहाँ पर परोक्ष और प्रत्यक्ष की परिभाषा जरा अलग है। जो किसी इंद्री मन या प्रकाश आदि की सहायता से जो ज्ञान होता है अपन को, वो कहलाता परोक्ष ज्ञान। हालांकि आँख के द्वारा हम चीज़ों को साफ साफ देख रहे हैं तो लगता है कि ये प्रत्यक्ष है, पर क्योंकि आँख के द्वारा देख रहे हैं और मन के द्वारा विचार कर रहे हैं, इसलिए किसी ना किसी की मदद से कर रहे हैं, तो वो परोक्ष कहलाए। ये परोक्ष की परिभाषा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्थ नहीं है इसका कि विजिबल और इनविजिबल, ऐसा अर्थ नहीं लिया परोक्ष और प्रत्यक्ष का। जो किसी बाह्य निमित्त
की
सहायता से जो होता है वो परोक्ष है, और शेष जो है वो प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्षम अन्यत मतलब अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। इसमें से भी सकल और विकल, सकल प्रत्यक्ष तो है केवल ज्ञान, और आंशिक रूप से प्रत्यक्ष है वो मना करे अवधि ज्ञान और मना करे ज्ञान। प्रत्यक्ष के मायने क्या होता है, जो विशद है और स्पष्ट है और इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ये प्रत्यक्ष की इसमें इन्होंने परिभाषा दी हुई है। फिर कहते हैं कि वो जो सम्यक ज्ञान में पहला ज्ञान है मति ज्ञान, उसके बहुत सारे और भी सिनोनिम्स हैं। मति ही स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध जिनर्थांतरम, मति कहो स्मृति कहो संज्ञा चिंता या अभिनिबोध, ये सब जो है पर्यायवाची शब्द हैं। इनके हालांकि शब्दार्थ अलग अलग है, पर शब्दार्थ अलग अलग होने से इनका जो अंतरंग मति ज्ञानावरण का शयोपसम है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। तो इसमें अंतरंग कारण की एक रूपता होने की वजह से इन पांचों को वैसे देखा जाए तो बाह्य में मनन करना मति है, स्मरण करना स्मृति है, किसी को नॉमिनेशन किसी चीज का करना वो संज्ञा कहलाएगी, चिंता मतलब विचार है और अविनिबोध मतलब जानना है। इस तरह से इन शब्दों के शब्दार्थ अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम इन सब के होने में निमित्त है, इसलिए पांचों को एक समान पर्यायवाची ही शब्द मान। अब ये बात स्पष्ट करते हैं कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कैसे होते हैं, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, वो जो मति ज्ञान है वो इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय का अर्थ यहाँ पर मन है, ईषत इंद्रिय, इंद्रिय के समान ही जो व्यवहार करता है पर वो इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय हमेशा परिमित या सीमित को ही जानती है और अपने एक निश्चित विषय को ही जानती है, मन के साथ ऐसा नहीं है। मन असीम को भी जान लेता है और ऐसा निश्चित नहीं है कि जैसे आंख सिर्फ देखने का काम करेगी वो सुनने का काम नहीं कर सकती, ऐसा मन का काम नहीं है, पर फिर भी वो इंद्रिय के समान ही है, इसलिए उसको ईषत इंद्रिय, आंशिक रूप से इंद्रिय की तरह भी है लेकिन इंद्रिय नहीं है, वो तो अनिंद्रिय कह दिया उसको। इस तरह मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। अभी शुद्ध ज्ञान के बारे में चर्चा नहीं की, आगे जाके चर्चा करेंगे। अब मति ज्ञान के नाम बता दिए बहुत सारे, मति ज्ञान कैसे होता है ये बता दिया, फिर कहते मति ज्ञान के भेद क्या हैं। तो अवग्रह अवग्रहेहा वाय धारणा पर तोड़ करके देखें तो अवग्रह इहा अवाय और धारणा, ये चार भेद मति ज्ञान के हैं। अवग्रह के मायने क्या है, एक तरह का सेंसेशन है, विषय विषयी सन्निपात अनंतरम यद ज्ञानम, जो इंद्री और उस जानने योग्य वस्तु दोनों के बीच जो संबंध बनता है उसके बाद जो सबसे प्रथम ज्ञान होता है उसका नाम अवग्रह है। किसी भी चीज को देखा सफेद है, ये जो है ये अवग्रह कहलाएगा। अब इसके बारे में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसका नाम ईहा है, सफेद है तो क्या है। फिर उसके बाद अब बहुत प्रकार के प्रश्न उठे, सफेद है तो बगुला हो सकता है, ध्वजा हो सकती है श्वेत रंग की, ऐसा प्रश्न जिज्ञासा उठ रही। उस जिज्ञासा का फिर हमने निर्णय कर लिया कि नहीं ये लाइन लंबी और बहुत आगे तक चली गई है, तो अगर ध्वजा होती तो यहीं रुकी रह जाती, ये तो बहुत आगे बढ़ गई सफेद सफेद ये लाइन, बगला है। तो ये निर्णय हो जाना ये कहलाता अवाय, और फिर कालांतर में उसको नहीं भूलना ये कहलाती धारणा,
रिटेंशन दिमाग,
अब वो मन के भीतर जो है रिटेनिंग कह लीजिए, पावर ऑफ रिटेनिंग या रिटेंशन, वो कहलाएगी धारणा। अब कभी भी आगे देखेगा तो हम सच से, हम लोगों को इसीलिए इतना संस्कार है कि हम किसी भी चीज को देखते हैं और तुरंत उसका निर्णय भी हो जाता है और धारणा पुरानी है उससे टैली भी हो जाता है और मति ज्ञान हो जाता, पता तक नहीं लगता। जबकि ये चारों स्टेप होते हैं और इतने फास्ट होते हैं कि अपन ने सफेद है ये भी देख लिया, उसके बाद जिज्ञासा भी हो गई कि क्या होना चाहिए और उसका समाधान भी हो गया और हमारे दिमाग में ये चीज बैठ भी गई कि भाई यही है,
सब चीज रिटेंशन हो जाती है कि धारणा सबकी हो जाती है।
नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ। और धारणा की भी सीमा है कि वो एक थोड़े समय के लिए हुई कि ज्यादा देर तक के लिए हुई, इसीलिए तो अपन कहते हैं कि ये चीज हमको याद ही नहीं आ रही है, अभी तो याद थी हमको, अभी भूल गए हम, मतलब उसकी धारणा आपके अंदर कम बनी थी इसलिए वो भूल गई।
बट वो कई चीजें वो बाद में रिकॉल हो जाती है।
कई चीजें तो जो है अवग्रह होने के बाद छूट जाती है। हाँ। कई चीजें अवग्रह और यह होने के बाद अब कौन निर्णय में पड़ेगा होगा, यहां तक यह होकर के छूट जाती, कुछ चीजों की अवाय होकर के छूट जाती। कुछ ही चीजें हैं जो कि धारणा चारों प्रकार से अपने भीतर आती है।
पर उसका कोई नियम है महाराज जी की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक?
ऐसा कुछ भी नहीं है, ये व्यक्ति के शयोपसम पे निर्भर करता है। मति ज्ञानावरण का जितना शयोपसम होगा उसे उन चीजों का उतना ही, किसी का अवग्रह, किसी का अवाय, किसी की ईहा, इस तरह रुक जाएगा वो वहीं जाकर के, जितना उसके अंदर जानने की क्षमता, इस पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने शब्द दिए हैं, अवग्रह को दिया है इन्होंने, सेंसेशन दिया है, ईहा को कंसेप्शन दिया है, और अवाय को जो है परसेप्चुअल जजमेंट दिया है, और रिटेंशन तो है ही इस तरह से धारणा। विशेष जानने की इच्छा का नाम यह है, ऐसी परिभाषा दी। और विशेष निर्णय के द्वारा जो यथार्थ ज्ञान होता है उसे अवाय कहते हैं। कि जैसे गौर से देखा तो पंख उठ रहे थे, गिर रहे थे, इससे निर्णय हो गया कि बबड़े ही, इस तरह का हो दिया। अब ये जो अवग्रह या अवाय और धारणा है ये बारह बारह प्रकार की होती है। हाँ, क्योंकि उतने प्रकार के पदार्थ हैं, बारह प्रकार के ही पदार्थ हैं जिनके बारे में ये सब अवग्रह ही अवाय और धारणा होती हैं। तब फिर पूरा मति ज्ञान जो है वो 336 भेद का हो जाता है। कैसे हो जाता है? 12 प्रकार के तो पदार्थ हो गए और चार प्रकार का ये ज्ञान, 12 चौक 48, और पांच इंद्रिय और मन से होता है, तो 48 में 6 का गुणा करने पर 288 आते हैं। और फिर आगे जाकर कहेंगे कि अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह से दो प्रकार के वग्रह होते हैं, उसमें से जो व्यंजनावग्रह है वो चक्षु इंद्रिय और मन के द्वारा नहीं होता, इसलिए चार इंद्रियों के द्वारा होता है, तो उस अवग्रह के 12 चौके 48 वो और इसमें ऐड हो जाते हैं, तो इस तरह 336 वेद होते हैं। अपन इसको देखें, बहु बहु विधि क्षिप्रा निश्रुतानुद्रुवाणाम सेतराणाम। बहु और सेतराणाम मतलब प्रतिपक्ष, बहु का प्रतिपक्ष क्या है? अल्प। बहुविध एक विध, क्षिप्र तो अक्षिप्र, अनिश्रत तो निश्रत, अनुक्त उक्त, ध्रुव अध्रुव, ये इस तरह से 12 रूपों में अवग्रह या अवाय धारणा ये 12 रूपों में होता है। जैसे बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाना ये बहु अवग्रह कहलाएगा। इनका कहना कि मैनी एंड मोर, मैनी इन नंबर, मच इन क्वांटिटी, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत नंबर में है, मतलब बहुत संख्या में है। इस ये जो ज्ञान होता है इसमें अवग्रह भी होता है, यह भी अवाय भी धारणा, ये बहु प्रकार का अवग्रह यह अवाय धारणा है। अब अल्प, अल्प में एक का, वन ऑफ नंबर, वन इन क्वांटिटी, इस तरह से तो वो एक अपन को होता है, एक चीज जान लेते हैं अपन, 10 चीजें भी जान लेते हैं अपन। अब फिर कहते हैं कि बहुविध यानी मैनी काइंड्स, बहुत चीजें तो हैं लेकिन बहुत प्रकार की चीजें, बहुत प्रकार की एक चीज या बहुत प्रकार की बहुत चीजों को जानना ये बहुविध अवग्रह है। इसके लिए ऐसा उदाहरण लिया है इन्होंने कि जैसे बहुत प्रकार, बहुत शास्त्र हैं, उन शास्त्र या एक ही शास्त्र है उसका बहुत प्रकार से हमने अवलोकन किया, सिद्धांत की दृष्टि से इस शास्त्र में क्या है, न्याय की दृष्टि से इस शास्त्र में क्या है, आचरण की परक दृष्टि से क्या है, ऐसे करके हमने एक शास्त्र को जानना एक अवग्रह हो गया। बहुत शास्त्रों में से एक ही बात को जाना वो, या कि बहुत बातों को जाना पर एक शास्त्र को ही जाना आपने, और तो वो कहलाएगा एक अवग्रह। और बहुत शास्त्रों को जान लिया, सामान्य रूप से जान लिया, तो बहु अवग्रह। लेकिन बहुत शास्त्रों को या एक शास्त्र को बहुत प्रकार से जाना तो बहुविध अवग्रह, और अगर बहुत शास्त्रों को या एक ही शास्त्र को एक ही प्रकार से जाना तो एक विध। एक विद और बहुविद में मतलब मैनी काइंड एंड वन काइंड, एक विद तो एक प्रकार से ही जाना, बहुत सारी चीजों को आपने एक प्रकार से ही जाना। इसको शास्त्र पर ही बहुत अच्छे से लगाया जा सकता कि एक शास्त्र है या बहुत शास्त्र है, उनमें से किसी एक बात को आप किसी एक चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई कुंद स्वामी के विभिन्न ग्रंथों में और सात तत्वों के बारे में क्या कहा है। अब आपने जो है एक अपनी लाइन बना ली और बहुत सारे, अब कुंद स्वामी के अलावा भी जो ग्रंथ हैं उनमें भी सात तत्वों के बारे में क्या किया है, एक किसी बात पर आपने बहुत सारे ग्रंथ, तो ये कहलाएगा एक विद। और पांच छह प्रकार की बातें जानने के लिए आपने एक ही शास्त्र को माध्यम बनाया या कई शास्त्रों को, वो महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने एक शास्त्र जाना या बहुत शास्त्र जाने, एक प्रकार से जाना या बहुत प्रकार से जाना, ये बहुविध और एक विध है। और वहां जो एक और बहुत है वहां सीधे नंबर और क्वांटिटी से वो है, उसकी उस क्वालिटी से मतलब नहीं है, काइंड से मतलब नहीं। फिर क्षिप्र मतलब क्विकली, कई बार अपन कुछ चीजों को बहुत जल्दी से जान, बहुत शीघ्रता से जान लेते हैं, तो वस्तु को बहुत शीघ्रता से जान लेना ये क्षिप्र कहलाएगा। अक्षिप्र मतलब स्लोली, धीरे धीरे जान पाते हैं भाई, फिर से कम हमारे समझ में, एक बार कहने से समझ में आ गया। और कई बार अपन कहते नहीं, थोड़ा आप आराम आराम से कहिएगा, मुझे सुनने में आया पूरा, एक बार फिर कहिएगा, ये कहलाता आक्षेप। तो ये धीरे धीरे बात को समझ पाना। और अनिश्रत, अनिश्रत मतलब कोई भी बात आधी कही और हमने जान ली, या कि हाथी पानी में डूबा था अकेली सूर दिखाई थी, हमने पूरा हाथी जान लिया, ये कहलाता अनिश्चित। माने हिडन या कंसील जो भी चीज है उसको भी हम जरा से इशारे से जान देते हैं, वो कहलाएगा अनिश्चित। और निश्चित मतलब जब पूरी तरह से बात चीज सामने आ जाए तब पहचान पाएंगे, भाई अपने समझ में नहीं आ रहा, पूरा दिखाओ, थोड़े से ऐसे करने से नहीं, इसी तरह से पूरी बात समझाओ, पूरा उच्चारण करो, तब हम समझ पाएंगे। और आपने जरा सा बोला नमः कहा, अरे हम समझ गया, नमः श्री वर्धमाना ने दूध करी बात मैंने, ऐसे उसका अर्थ पूरा बता दिया अकेले नमः कहने से। तो ये कहलाएगा अनिश्रत। और निश्रत में पूरी तरह से बात सामने आ जाए तब समझ में आती। अच्छा, और इनको सभी इंद्रियों पे लगाना, अपन एक आध दो पे लगा रहे हैं, देखने पर, आंख से नहीं, छूने पर भी जरा सा छू करके और बता दिया, जरा सा सूंघ करके बता दिया, पांचों इंद्री के माध्यम से ये सब बनेंगे उदाहरण सब। फिर उसके बाद अनुक्त, अनुक्त मतलब जिस विषय में कुछ नहीं भी कहा गया फिर भी उसे जान लिया, इस तरह से अन कहा, सिर्फ उनके एक्सप्रेशन से। जैसे कि कोई व्यक्ति संगीत का अच्छा जानकार है और आपने तार जरा से छेड़े तो समझ गए आप ये राग बजाने, ये आप राग बजाने भी गए, हाँ ये अनुक्त है, मतलब बिना कहे बात को जान लिया उनके एक्सप्रेशन से या उससे, ऐसा आप जान लेते हैं। और कहने पर ही समझ पाना ये उक्त कहलाएगा, डिस्क्राइब्ड है पूरी तरह से तब जान पाए हैं। और ध्रुव मतलब दो अर्थों में लिया गया, एक ऐसा ज्ञान जो जिस रूप में होता है बहुत समय तक कांस्टेंट उसी रूप में होता रहता है, वो कहलाता ध्रुव। और अभी तो जाना था फिर थोड़ा भूल से गए, फिर से जानना पड़ रहा है, ये अध्रुव कहलाता। कभी कभी अपन का ज्ञान जो है उसी चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानने को अपने को लगता है कि बहुत अच्छे से जानते हैं, कभी कभी लगता है कि नहीं हम इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते, तो कम हो गया। तो वो कहते हैं कि मति का अनावरण कर्म का कम ज्यादा स्वरूपसम होते रहने पर, संक्लेश और विशुद्धि में फर्क हो जाने पर अध्रुव नाम का अवग्रह होता है। और ध्रुव में मतलब विशुद्धि लगातार एक जैसी बनी है, तो फिर वो व्यक्ति इस चीज को एक जैसा जानता। एक तो ये लिया उन्होंने ज्ञान के बारे में, दूसरा ये लिया है कि जैसे जो चीजें कॉन्स्टेंट हैं, पहाड़ है तो उसको हम जान रहे हैं, वृक्ष खड़ा हुआ है उसको हम जान रहे हैं, ये ध्रुव अग्रह। और जाती हुई तेज गाड़ी को, रेल को जान लिया, फट से रेल निकल गई, इतनी फास्ट जा रही थी, या कि पक्षी एकदम सामने से उड़ करके निकल गया तो पहचान लिया कि ये अध्रुव अग्रह कहलाएगा। ऐसा भी दिया है, चीजों के स्थिर और अस्थिर होने से भी ज्ञान को ध्रुव और अध्रुव कहा है, और ज्ञान के ही कांस्टेंट या कम ज्यादा होने से ध्रुव और अध्रुव, ऐसे दोनों चीजें कहें। इस तरह से ये 12 प्रकार का मति ज्ञान और अवग्रह या अवाय धारणा इन सब रूपों में होता है। इस तरह ये 48 प्रकार हो गए। और फिर हर एक में इंद्री भी लगाओ, पांच इंद्री और मन, तो 288 प्रकार से अपने को मति ज्ञान हो गया। फिर कहते हैं अर्थस ये जो 12 प्रकार का अवग्रह और 12 प्रकार के पदार्थों को चार प्रकार चार रूपों में जानने वाला जो मति ज्ञान है वो अर्थ का अर्थात पदार्थ का है। पदार्थ का अवग्रह आदि चारों ही मति ज्ञान होते हैं, लेकिन व्यंजनस्य अवग्रह यहाँ पर अर्थ के मायने हैं व्यक्त। सामान्य रूप से जो है ये परिभाषा इन्होंने बनाई है, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करना, एक उदाहरण से तो डिफाइन जल्दी हो जाता। व्यक्त के ज्ञान को अर्थ अवग्रह कहते हैं और अव्यक्त के ज्ञान को व्यंजनावग्रह कहते हैं, ऐसी परिभाषा दी है। तो व्यक्त के मायने क्या है, तो उसके लिए उदाहरण दिया है कि जैसे एक नए मिट्टी के सकोरे पर या खड़े पर हम पानी की एक एक दो दो बूंद डालते हैं तो क्या होता है, वो गायब हो जाती है, उसी में सूख जाती है, हमारी आंख से दिखाई नहीं पड़ रही, ना किस कोई व्यक्ति उसके बारे में सोच सकता है कि इसमें डाली गई, हमने दो तीन डाल के और बंद कर दिया और फिर कहा कि आप देखो। तो हम आंख के द्वारा भी नहीं पकड़ सकते, मन के द्वारा भी सोच नहीं सकते, पर धीरे धीरे ज्यादा डालने पर फिर वो उसका स्थान गीला होना शुरू हो जाता है, तब फिर वो हो गया व्यक्त अवग्रह, वो कहलाएगा अर्थावग्रह। और जब तक ये समझ में नहीं आ रहा था तब तक का वो जो अवग्रह है वो व्यंजन अवग्रह, वो अव्यक्त का
लेटेंट जिसको छिपा हुआ कहते हैं, हाँ वो लेटेंट हो गया, जिसको लेटेंट ही कहते
हैं, हाँ वैसे ही उसी तरह से। तो ये इन्होंने इस तरह से दो प्रकार का अवग्रह कि हमें कुछ पदार्थों का व्यंजनावग्रह होता है और कुछ पदार्थों का अर्थावग्रह होता है। अर्थावग्रह तो सभी का होता है और उसके पहले व्यंजनावग्रह, जैसे कि
जब तक लेटेंट रहता है तब तक व्यंजनावग्रह है और उसके बाद में कन्वर्ट हो जाता है
अर्थस्य, तो वो अर्थावग्रह कहलाएगा। इसमें एक चीज और है कि देखिएगा दो तीन बूंदें भी डाली गई हैं पर अगर कोई भी पकड़ना चाहे तो नाक के द्वारा पकड़ नहीं सकता, हल्का सा गंध आ रही उसमें से कि पानी गिरा, लेकिन आंख से, और वो इसलिए कहते कि ना चक्षु अनिंद्रियाभ्याम। ये जो व्यंजन का अवग्रह है, व्यंजनावग्रह है, वो चक्षु और अनिंद्रिया अर्थात मन के द्वारा नहीं सोच सकते कि इसमें ये, बाकी चार इंद्रियों से हो जाएगा, बाकी चार इंद्रियों से तो हो रहा है व्यंजनावग्रह। तो व्यंजनावग्रह 12 पदार्थों को चार इंद्रियों से होता है इसलिए 48 प्रकार का हो गया, और अर्थावग्रह 5 इंद्रिय और मन 12 प्रकार के पदार्थ और अवग्रह या वह धारणा सब होती, तो इस प्रकार 288 हो गए। अब एक प्रश्न उठेगा कि व्यंजनावग्रह अकेला होता है, व्यंजन की यह नहीं होती, कहते जिज्ञासा उठेगी नहीं क्योंकि वो अव्यक्त है, सिर्फ अवग्रह हो सकता है कि आपने गंध से जान लिया, स्पर्श से जान लिया, थोड़ा गीला तो लग रहा है, लेकिन इसके बाद कोई प्रश्न मन के अंदर नहीं उठ रहा है, ना कोई निर्णय करने की आवश्यकता है, ना मैंने सिर्फ व्यंजन का अवग्रह ही होता है, ये डिसाइड होगा और चार इंद्रियों के द्वारा होता है इसलिए 48 प्रकार का ही ये होता। ये पूरा मति ज्ञान के 336 वेदों को इतने तीन सूत्रों में आचार्य ने बताया। इसके बाद आता है शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, श्रुतम मतिपूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान जो मति ज्ञान पूर्वक होता है और दो प्रकार का, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का होता है, ऐसा कह दिया हूं। अब इसको अपन समझें कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसका अर्थ क्या है, तो कहते मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थों और विशेष रूप से जानने का नाम श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान के द्वारा हमने जाना कि यहाँ पानी फैला हुआ, ये पानी है, अब इसमें शुद्ध ज्ञान लगाएंगे कहाँ से आया होगा, ये बिल्कुल बढ़िया उदाहरण इसका है, तो वो कमंडल से आया है या छत में लीकेज हो गई वहां से आया है या किसी ने और गिरा दिया है, तो हमने उस चीज को भी जान लिया। अर्थ से अर्थांतर के ज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान है, एक पदार्थ या मति ज्ञान के द्वारा जो हम अन्य विशेष रूप से उस पदार्थ को जानने के लिए प्रयास करते हैं वो सब शुद्ध ज्ञान कहलाता है। अब वो जो शुद्ध ज्ञान है वो दो प्रकार का है, ये एक शुद्ध ज्ञान तो सभी जीवों को होता है पर एक और है जो शुद्ध ज्ञान भगवान के द्वारा दिव्य ध्वनि होती है उसे भी शुद्ध ज्ञान माने, भगवान के द्वारा जो दिव्य ध्वनि में वचन कहे गए हैं या आप तो के वचन जिनवाणी जिस उसे ही शुद्ध ज्ञान कहते हैं, एक दूसरी परिभाषा शुद्ध ज्ञान की ये बनेगी। तो वो जो शुद्ध ज्ञान है वो दो प्रकार का, भगवान के द्वारा जो जिनवाणी के रूप में कहा गया शुद्ध ज्ञान है या जिसके माध्यम से हमें शुद्ध ज्ञान होता है, देखिए ये स्क्रिप्ट है, इसके माध्यम से तो हमको ज्ञान हो रहा है, हैं, विशेष रूप से ज्ञान हासिल कर रहे हैं, इसलिए ये भी शुद्ध ज्ञान है। अब ये शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक अंग प्रविष्ट और एक अंग बाह्य। आचारांग आदि 12 अंग के ज्ञान को अंग प्रविष्ट कहते हैं और 12 अंग के आधार पर बाद के गंधर्व और अन्य आचार्यों के द्वारा अल्प बुद्धि अल्प आयु वाले शिष्यों के हित के लिए जो ग्रंथ रचना हुई है उसे अंग बाह्य कहते हैं। इस तरह की परिभाषा जो है दोनों की बनाई, तो दो भेद हो गए, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। इसमें से अंग बाह्य तो अनेक प्रकार का है, अंग प्रविष्ट दो प्रकार का है, द्वय अनेक द्वादश भेदम। इन्होंने इस तरह से इसके दो भेद करके अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, पहले अंग प्रविष्ट न लेके अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट ऐसा ले लिया, तो अंग बाह्य के अनेक भेद क्रम से लगाएंगे अपन और 12 भेद अंग प्रविष्ट के हो गए। उनके अगर अपन चाहें तो अंग बाह्य के और अंग प्रविष्ट के कुछ नाम ले सकते हैं, ये है सामायिक चतुर्विंशति स्तव वंदना प्रतिक्रमण वैनयिक प्रतिकर्म, ये सब अंग बाह्य हैं। और अंग प्रविष्ट में तो आचारांग श्रुतिकथांग स्थानांग समवायांग व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञात्री धर्म कथा उपासकाध्यान अंततः दश अनुत्तरोपाधिक दश प्रश्न व्याख्यान और विपाक सूत्र, ये 12 अंग हैं। अब इन 12 अंगों के तो बहुत डिटेल हैं, किसमें कौन सा विषय दिया गया है वो अपन अलग से उसको पढ़ें तो पढ़ें पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये शुद्ध ज्ञान के बारे में है।
मंडी बामरा दिनांक 4 सितंबर 1999।
21वां सूत्र है भव प्रत्यो वधे देव नारकाणि। अवधि ज्ञान जो है 5 ज्ञानों में तीसरा ज्ञान है, या अपन ये मान के चलें कि ज्ञान दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष है, अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। उसमें से अवधि ज्ञान की चर्चा इस सूत्र में की गई कि अवधि ज्ञान भाव प्रत्यय प्रकार का जो अवधि ज्ञान है वो देव और नारकियों के होता है। अवधि ज्ञान वैसे दो प्रकार का माना गया है, एक भाव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय का मतलब ये है कि अंतरंग में उस ज्ञान का शयोपशम तो है ही, लेकिन वो भाव विशेष उस ज्ञान के होने में कारण है। और जो गुण प्रत्यय है उसमें सम्यक दर्शन और चारित्र इत्यादि जो गुण है वो बाह्य कारण बनते हैं उस अवधि ज्ञान के में। हालांकि दोनों प्रकार के अवधि ज्ञान भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दोनों में ही अंतरंग में जो अवधि ज्ञानावरण का शोपसम है वो तो समान है, पर एक में बाह्य निमित्त है वो पर्टिकुलर भाव और एक में बाह्य निमित्त है यम और सम्यक दर्शन इत्यादि। तो ये कह रहे हैं कि भाव प्रत्यय नाम का जो अवधि ज्ञान है वो देव और नारकियों के ही होता है, और क्षयोपशम निमित्ता षड विकल्प शेषक, और शेष सभी के लिए अर्थात मनुष्य और तिरंचों के लिए वो क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला अवधि ज्ञान होता है जिसे गुण प्रत्यय कहते हैं, वो 6 प्रकार का है। वो 6 प्रकार कैसे हैं, तो अनुगामी अननुगामी वर्धमान हीयमान अवस्थित और अनवस्थित, ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान है। दोनों अवधि ज्ञान में अंतर क्या है, तो कहते हैं जैसे पक्षियों को आकाश में उड़ने की शिक्षा लेनी नहीं पड़ती, उन्हें स्वभाव से ही प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस पर्याय को प्राप्त होते ही देव पर्याय या नरक पर्याय को प्राप्त होते ही जीव को अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो क्षयोपशम निमित्तक या गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान है उसमें व्रत नियम के होने पर ही होता है। तो इसमें एक चर्चा और की गई है कि जो क्षयोपशम निमित्त वाला या गुण प्रत्यय वाला अवधि ज्ञान है तो उसमें तो कह ही दिया कि अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से हो रहा है, तो क्या भाव प्रत्यय में सिर्फ भाव से ही हो जाता है, अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं होता? तो कहते नहीं, अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो अंतरंग कारण है ही, बाह्य कारण की चर्चा कर रहे हैं कि उस भाव के द्वारा के निमित्त से वो सहज रूप से उन जीवों के लिए देव और नारकी के लिए उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उसे भव प्रत्यय कहा। और व्रत नियम के द्वारा बाद में जब उत्पन्न होता है तो उसे शौपसम,
उसकी करेक्टरिस्टिक दोनों की एक सेम है,
दोनों सेम है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। वैसे देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ऐसे तीन भेद भी अवधि ज्ञान के की गए हैं। देव नारकी जीवों के जो भव प्रत्यय नाम का ज्ञान है वो देशावधि प्रकार का है, और जो सर्वावधि परमावधि है ये तो क्षयोपशम निमित्त से ही होता है और मनुष्यों के ही होता है, ये सभी जीवों के नहीं होता है। इस तरह अवधि ज्ञान के बारे में आगे और विशेष चर्चा करेंगे। पर अनुगामी वो कहलाता है जैसे जो साथ साथ चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव गया या एक भाव से दूसरे भाव में गया, तो जो अवधि ज्ञान होने के बाद साथ साथ चले उस जीव के भाव से भावांतर होने पर या पर्याय से पर्यायांतर या कि स्थान से स्थानांतर होने पर वो साथ में रहे तो वो अनुगामी कहलाता है, और जो छूट जाता है वो अननुगामी कहलाता है, और जो जितना होता है उससे निरंतर बढ़ता चला जाता वो वर्धमान कहलाता है, और जो जितना ज्ञान अवधि ज्ञान होता है उससे घटता चला जाए तो वो हीमान कहलाता है। और अवस्थित, अवस्थित मतलब कॉन्स्टेंट, जितना हुआ था उतना ही जीवन के अंत तक रहा था, बल्कि केवल ज्ञान के होने तक, मरण तक या केवल ज्ञान होने तक उतना ही बना रहता है, वो कहलाता अवस्थित। और अनवस्थित, समुद्र में उठने वाली, जल में उठने वाली तरंगों के समान कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी ज्यों का त्यों रहा था, वो अनवस्थित कहलाता है। ऐसा छह प्रकार का अवधि ज्ञान है। इसके बाद कहते हैं कि चौथे नंबर का ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान है। विजु विपुलमति मनः पर्यय, मनः पर्यय ज्ञान विजुमति और विपुलमति के भेद से दो प्रकार का है। मनः पर्यय ज्ञान की परिभाषा क्या है, तो दूसरे के मन में स्थित बात को जो ज्ञान जान ले, हाँ, विचार को जो जान ले वो मनः पर्यय ज्ञान है। अब वो विजु है या कि वक्र है, इस पर दो प्रकार का हो जाता है। अगर सरल उसकी क्रिया है, सरल ही विचार है, सरल ही वाणी है, तो उसको पकड़ लेगा, जान लेगा, वो कहलाता है ऋजुमति। ऋजु के मायने हैं सरल, और विपुल मतलब किसी ने अभी नहीं सोचा है, आगे सोचेगा, आधा धोधा सोचा है, इस तरह के अर्धचिंतित, अचिंत और पहले सोचे गए सभी बातों को जो जान लेता। विपुल मतलब बहुत यूज है वो नॉलेज, बहुत स्पष्ट और बहुत विशद, इस तरह का जो ज्ञान है वो कहलाता है विपुल मति मनः पर्यय ज्ञान। ये इन दोनों में अंतर है। जो सरल और कुटिल दोनों प्रकार के मन वचन काय के द्वारा किए गए मनोगत विषय को जान लेता है वो विपुल मति कहलाता, और जो मात्र सरल मन वचन काय के द्वारा किए गए मनोगत विषय को जानता है, इसमें एक बहुत अच्छा जो यह है उदाहरण, इसको थोड़ा तो यहां पर जो विपुल शब्द है उस विपुल शब्द का अर्थ है विस्तीर्ण, जो दूसरे के मन में स्थित सरल और कुटिल सब बातों को जान लेता है वो विपुल मति,
तो सभी प्रकार की बातें,
सभी प्रकार की बातें जान लेता, और वो सिर्फ सरल बातों को जान पाता है विजुमति। और विपुल मति जो है वो विस्तीर्ण रूप से सभी बातों का, अब इनमें ये भी एक्सप्लेन किया है कि इस मनः पर्यय ज्ञान में कुटिल मन वचन काय में गत जो अर्थ है उसको भी चिंतित है, अर्धचिंतित है या अचिंतित है या विपरीत रूप से भी सोचा गया है वो ये भी जान लेगा कि आपने इस बारे में विपरीत सोचा है। वो सब प्रकार की होने वाली चिंता, जन्म मरण, सुख दुख आदि इन सब बातों को जान लेता है, ये विपुल मति का विषय है। विशुद्ध प्रतिपादाभ्यम तद विशेष है। विपुल मति और ऋजुमति में क्या विशेषता है, तो कह रहे हैं कि दोनों में विशेषता ये है कि विपुल मति जो है वो ऋजुमति की अपेक्षा अधिक विशुद्ध है, या विशुद्ध तर का उपयोग किया उन्होंने, विशुद्ध तर है और सूक्ष्म भी है और उसका विषय भी ज्यादा है। और विपुल मति जो है उत्पन्न होने के बाद नष्ट नहीं होता, केवल ज्ञान होने तक बना रहता है, ऋजुमति के साथ ऐसा नियम नहीं है। इसलिए ऋजुमति जो है वो अप्रतिपाती नहीं है, विपुलमति तो अप्रतिपाती है और विशुद्धतर है। ये दो विशेषताएं ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति में अधिक है। और अवधि ज्ञान से कंपेयर करते हैं मनः परे ज्ञान को, तो फिर एक सूत्र दिया, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनः परे। विशुद्धि की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान में अंतर है। अब देखिएगा, विशुद्ध अवधि ज्ञान की अपेक्षा मनः परे ज्ञान ज्यादा निर्मल है, ज्यादा विशुद्धि उसमें है। बिना विशुद्धि के मनः परे ज्ञान नहीं होता। मनः परे ज्ञान की विशेषता एक और है, इसके स्वामी की चर्चा जब करेंगे तो वो बात आएगी। पहली चीज तो है विशुद्धि, तो विशुद्धि मतलब निर्मलता। मनः परे ज्ञान की निर्मलता अवधि ज्ञान से अधिक है। मनः परे ज्ञान सूक्ष्म भी है,
मतलब जिसको होता है
उसकी विशुद्धता भी है, उसी की विशुद्धता है। और अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो अंगुल के असंख्यात में भाग से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण है, जबकि मनः परे ज्ञान का क्षेत्र मनुष्य लोक के भीतर रहने वाले मनुष्य के मन में स्थित बात को ही जानना है। अवधि ज्ञान का स्वामी चारों गतियों का जीव हो सकता है, लेकिन मनः परे ज्ञान का तो वर्धमान चारित्र वाला होना चाहिए, सात रिद्धि में से किसी एक रिद्धि का धारी होना चाहिए और मुनि उसके लिए ही मनः परे ज्ञान संभव होगा, ये स्वामी की अपेक्षा है। और अवधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट विषय है वो कारमांड वर्गणाओं को जान लेगा, उसका भी अनंतमा भाग मन अवधि ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। लेकिन जितना अवधि ज्ञान जानता है उसका भी अनंतमा भाग ऋजुमति जान लेता है और उसका भी अनंतमा भाग विपुलमति जान लेता है। ये जो है विषय की अपेक्षा सूक्ष्मता, विषय बहुत नहीं है लेकिन विषय बहुत सूक्ष्म है। कारमांड वर्गनाओं को तो जान रहा है और उसके अनंतमय भाग को जान रहा है सर्वावधि परमावधि अवधि ज्ञान, लेकिन उसके भी अनंत में भाग को ऋजुमति और उसके भी अनंत में भाग को विपुलमति, ये सूक्ष्मता की अपेक्षा। इस तरह से ये विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनः परे यो मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान द्रव्य की कुछ पर्यायों को ही जानता है, जानता सभी द्रव्यों को है लेकिन सभी द्रव्यों की कुछ ही पर्यायों को जाना जा सकता मति ज्ञान और अवधि ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के द्वारा। रूपिशु वधे, अवधि ज्ञान के द्वारा तो सिर्फ रूपी पदार्थ को ही जाना जा सकता है, अन्य पदार्थों को जाना ही नहीं जा सकता। और उसके बाद जो है तदनंत भागे मनः परेयस्य, मनः पर्याय ज्ञान उस अवधि ज्ञान के द्वारा जाने गए विषय का भी अनंतमा भाग जान लेता है रूपी पदार्थ। जो अवधि ज्ञान का विषय है उसका अनंतमा भाग मनः परेय ज्ञान का है, और सर्वद्रव पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान तो सब द्रव्यों को और उसकी अनंत सब पर्यायों को जान लेता है। एकादिनी भाग्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, अगर एक जीव को ज्ञान हो तो एक साथ चार हो सकते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परेय ज्ञान। एक अकेला ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, दो होंगे तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होगा, तीन होंगे तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मनः परेय ज्ञान, और एक साथ हो सकते हैं तो मैक्सिमम चार हो सकते हैं, मति, श्रुत, अवधि और मनः परेय ज्ञान। इस तरह से ये इनके विषय हैं। मति श्रुति योर मति श्रुतावधियो विपर्ययस्य, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान अगर मिथ्यात्व के साथ होते हैं तो ये विपरीत हो जाते हैं, तब उसी को मति अज्ञान, श्रुता ज्ञान और विभंग अवधि, ऐसा जो है तीनों को नाम लिया, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ऐसी संज्ञा भी मिल जाती है। ये ऐसा क्यों होता है तो कहते सद सतोर अविशेषाद्य दक्षोपलब्धेरुन्मत्वत्, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले तो उसको उन्माद आ जाता है, तब फिर वो वास्तविक और अवास्तविक का अंतर किए बिना अपनी इच्छा अनुसार उस चीज को जानता है। इसी तरह से ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जब मिथ्यात्व के साथ होते हैं या अवधि ज्ञान मिथ्यात्व के साथ होते हैं तब फिर वो भी असमचीन हो जाते हैं एक उन्मत्त व्यक्ति की तरह। ये हमें किया है। इस तरह ये ज्ञान ये जिसको अपन प्रमाण कहते हैं उसकी चर्चा हुई। फिर नए के द्वारा भी वस्तु को जाना जा सकता है, उसके लिए सूत्र बिल्कुल अलग है।